भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय।
आज हम श्रीमद्भागवतम का तीसरा स्कंध अध्याय खत्म और श्लोक संख्या है 22 और 23। 22वां विदुर जी जब सरस्वती के तट पर से गुजर रहे हैं, वहां उनको 11 तीर्थ स्थल के नाम है, इनका ही वर्णन है, वो नाम जरा सुन लीजिए। त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गृह तथा श्राद्ध देव, ये विदुर ने इन सब को देखा और ठीक से कर्मकांड किए। विदुर जी को कर्मकांड करने की आवश्यकता क्या है, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, इन तीर्थस्थलों में कर्मकांड करने से क्या फायदा। कम से कम युद्ध भूमि में जो मारे गए तो अनायास ही इन लोगों के श्राद्ध के लिए कुछ तीर्थस्थलों में करना चाहिए कि इन लोगों का उद्धार हो। तो यहां एक भक्त हृदय भगवान की प्रीति के लिए अपने स्वजनों के लिए यदि श्राद्ध करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी ईश्वरपुरी से मिलने बहाने गया में अपने पिताजी का श्राद्ध करने के गए थे। तो ऐसे शब्दों से हमें यदि कोई संदेह होता है कि यहां कर्मकांड की क्या आवश्यकता है, विदुर जी को कर्मकांड करने की क्या आवश्यकता है, भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं भगवान के निमित्त बनाई गई हैं, इसलिए एक ही मात्र उसमें उपदेश रहता है। तो भक्तों के लिए इसमें कोई ऐसी यदि इनकी संकल्प की भावना भगवान की प्रीति के लिए ही है तो वो कर्मकांड रहता ही नहीं। बाहर से एक शरीर की क्रियाएं दिखाई देगी लेकिन संकल्प ही भगवान की प्रीति का होने के कारण कर्मकांड नहीं कहलाता। आज का श्लोक है अन्यानी
अन्यानी
च
इह
द्विजदेव
देवैः
तानि नाना आयतानि आयतनानि
आयतानि
विष्णोः
विष्णोः
प्रति
अंग
अंग मुख्य
मुख्य
अंकितः
अंकितः
मन्दिराणि
मन्दिराणि
यत्
यत्
दर्शनात्
दर्शनात्
कृष्णं
कृष्णं
अनुस्मरन्ति
अनुस्मरन्ति।
अन्यानि चेह द्विज देव देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति अन्यानि चेह द्विज देव देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति अन्यानि चेह द्विज देव
देवैः
कृतानि नानायतनानि विष्णुः तरंग मुख्यांकित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्णं मनुस्मरन्ति अन्यानि अन्य च तथा इह यहां विजदेव महर्षियों द्वारा देवैहि तथा देवताओं द्वारा कृतानि स्थापित नाना विविध आयतनानि विविध रूप विष्णुः भगवान के प्रति प्रत्येक अंग अंग मुख्य प्रमुख अंकित चिन्हित मंदिराणि मंदिर यत् जिनके दर्शनार्थ दूर से देखने से कृष्ण आदि भगवान को अनुस्मरन्ति निरंतर स्मरण कराते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिविदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख चिन्हों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। मानव समाज चार वर्ण तथा चार आश्रमों में विभाजित है, जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतम लगे रहते हैं द्विजदेव कहलाते हैं, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ, चंद्र लोक से ऊपर जो उत्कृष्ट लोक के वासी देव कहलाते थे। द्विजदेव तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध रूपों वाले तथा गोविंद मधुसूदन नृसिंह माधव केशव नारायण पद्मनाभ पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते थे। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। विष्णु के चार हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख चक्र गदा तथा कमल का फूल रहता है। इन चारों चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसीलिए वे चक्री कहलाते हैं। भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारे जगत का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग से दूर से ही इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बना जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि विदुर ने इन मंदिरों को कम से कम 5000 पूर्व देखा था और विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्य या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की, किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें इस भावनामृत के स्तर तक उठाने के लिए इन्होंने विष्णु मंदिर की स्थापना की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकर चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सगणानुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अन्यानि चेत् द्विजदेव देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख चिन्हों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। विदुर जी 5000 वर्ष पहले मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। द्वापर युग का तो वैसे धर्म था ही कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा का ही एकमात्र पवित्र होने का साधन माना जाता और वो भी सज्जनों के लिए। तो सज्जन लोग तीर्थाटन करते थे। विदुर जी तो महात्मा है, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, लेकिन द्वापर युग में वैसे सारे जन कल्याण के लिए जो युग धर्म था तो वो बड़े बड़े मंदिरों में भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की सेवा द्वारा स्थापित किया जाता। कलयुग में तो मंदिर रहे ही नहीं, बुद्ध भगवान के समय भी कलयुग सारे मंदिरों का निर्माण कराने में कोई प्रबंध रखा ही नहीं गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पुनः ऐसे बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करवाने के लिए 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा। लेकिन आप ताजुब होंगे कि वैष्णव धर्म की स्थापना पहले भी कई मंदिर थे लेकिन बहुत कम मात्रा में। जगन्नाथपुरी का मंदिर आज से कम 2500 साल पहले बनाया गया था और श्रीरंगम का मंदिर रामानुजाचार्य के पहले यमुनाचार्य ने बनवाया। तो ये भी कम से कम 700-800 साल पहले बना, जबकि वैष्णव धर्म की स्थापना हुई तक। तो युग के समय के अनुसार काम करने के लिए आवश्यकता बनाई गई। चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में चले आने वाले ने काफी मंदिर बनाए, लेकिन श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए तो उन्होंने मंदिर के लिए स्थल ढूंढने के लिए उन्होंने देखा कि ये चर्च सभी खाली पड़ रहे हैं, हम वही क्यों ना ले लें। तो बहुत सारे चर्च खरीदने शुरू किए और एक तरह जहां भगवान को नकारने के लिए चर्च बंद किया जाता था, प्रभुपाद जी ने वो मौके का फायदा उठाकर चर्चों में मंदिर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये कलयुग की शुरुआत है, यानी कि युग धर्म की स्थापना के लिए मंदिर करने की आवश्यकता बनी रहती, लोगों को भगवान के दर्शन के लिए वैसे ही उन्मुखता होती है। ये ऐसी उत्सुकता में भगवान का श्री विग्रह देखने के लिए आदि बन गए। कई लोगों को तो भगवान के श्री विग्रह देखे बिना जीवनचर्या दिन की करने के लिए ही इच्छा नहीं होती, तो ये एक अच्छी पद्धति तो है ही, लेकिन क्या इससे विकास हो सकता? विकास करने के लिए हमें ज्यादा समझ, यहां जैसे श्रीमद् भागवत में बताई गई है, वो प्रणाली अपनानी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ही मंदिर बनते थे। द्वापर युग में देवता स्वयं भगवान के मंदिर बनाते थे। और यहां जो शब्द का प्रयोग कहेंगे द्विज देव देव ही, द्विज देव, जो लोग ब्राह्मण कक्षा के हैं और मंदिर बना रहे हैं, तो भगवान को, यानी कि एकमात्र भगवान का आह्वान कराने के लिए उनको ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान आप शिव विग्रह के रूप में आकर यहां उपस्थित हो, कि जैसे ये देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य जो हैं वो आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर सके जिसके आप इन लोगों की सेवा आप स्वीकार करने के लिए उपस्थित रहे। भगवान के श्री विग्रह की सेवा इसी तरह आप आज हमें मिलती आ रही है। लेकिन विदुर जी का आंतरिक भाव देखो, यहां भगवान का अनुस्मरण बारंबार स्मरण कराने चिन्हों पर ही लक्ष्य होता है। इनका लक्ष्य ध्यान कि इस सब जगह जाने या कुछ भी क्रिया काम कर्मकांड अगले श्लोक में जैसे बताया, तो वो करने के पीछे भगवान का स्मरण बना रहा है। तो भक्तों के लिए भगवान का स्मरण मात्र एक ही भक्ति का नियम होता है, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधो एतयोरेव किंकर। सारी विधि और निषेध यदि हम जो कुछ अपनाते, चाहे वो कर्मकांड जैसे भी क्यों लगती है, लेकिन भगवान का अनुस्मरण कराने के लिए तो स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण बना रहे, यही एकमात्र भक्ति का भी एक विशेष महत्व रहता है। चाहे आप भगवान के विग्रह की पूजा करो, या सिर्फ वंदन, या सिर्फ प्रार्थना द्वारा भगवान की भक्ति करना चाहते हो, और कोई तो अन्य भावों से भी करना चाहता है, लेकिन भावों की शुद्धि न होने से ये सब प्रगति यथार्थ नहीं कहलाती। सर्वप्रथम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, ये तीन मुख्य कलयुग में काम करेंगे, और चनम पूजनम वंदनम ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो अन्य की बात कहां है, जो दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कलयुग में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण सबसे बड़ा महत्व का है। जब विदुर जी ने ये रुख अपनाया, यही सिद्धांत अपनाया कि भगवान का स्मरण बना रहे, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभी भाग नहीं ले रहे, दुर्योधन के कटु वचनों सुनकर वो गृह त्याग करते हैं और सीधे सरस्वती के किनारे तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं। इनका सारा उद्देश्य भगवान के प्रीति के लिए उनका अनुस्मरण करने का बना। कहीं भी जाए तो हम भगवान का अनुस्मरण, स्मरण के पीछे स्मरण, उसे अनुस्मरण के, यानी कि बारंबार स्मरण के अलावा कुछ हमारे समक्ष कोई भौतिक समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, ये सब पिघल जाती है, ये सब हट जाती है। तो भगवान के अनुस्मरण कराने के लिए ही सारी व्यवस्था इस कलयुग में भगवान के नाम द्वारा की जाती है। यज्ञ ही संकीर्तनम प्राहे जयंती सुमेधसा, इसलिए सिर्फ मंदिरों यदि बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाओ, देवताओं के मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं बने, जबकि स्वयं द्वापर युग देवताओं मंदिर बनाते थे भगवान के अनुस्मरण। आजकल कलयुग में देवता भी आने में डरते हैं। कलयुग में देवता भी आते नहीं, उपस्थित नहीं होते, क्योंकि इतना विषम युग है। कोई लायकात नहीं है, सिर्फ एक ही लायकात बताई है, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम प्रजे। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करके ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है, नहीं तो एक कलो दोष निधे राजन, दोष की निधि है। जहां देखो बहुत सारी त्रुटियां ही त्रुटियां, उसमें ही एकमात्र महत गुण और ऐसा गुण दिया है जो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, किसी देवताओं का कीर्तन नहीं, किसी भगवान के अन्य रूपों का कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जो भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन है। युग धर्म में बहुत सुनिश्चित रूप से शास्त्र में हमें दिया गया कि ये हरे कृष्णा महामंत्र जो यजुर्वेद मुख्य वेद है, यजुर्वेद में से ही चार वेद हुए, प्रभुपाद जी ये कहते हैं। और इसमें कलिसंत्रणी उपनिषद में हमें हरे कृष्णा महामंत्र इस कलियुग को तारण करने वाला, कलिसंत्रणी उपनिषद, उसमें बहुत स्पष्टता से किसी भी भेदभाव बिना ये कहा कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्पशनाशनम् परतरोपाय सर्व वेदेषु न दृश्यते। ये सोलह नाम का ही उच्चारण द्वारा कलियुग तर जाए, इसके अलावा और कोई अन्य समांतर या उसे ऊपर कोई उपाय नहीं। तो इस महामंत्र द्वारा भगवान का अनुस्मरण भी बना रहता है, कलयुग के दूषणों से आवश्यक पवित्रता भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ऐसी पवित्रता प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में ये महत्वगुण है, ऐसा गुण है कि भगवान का नाम कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ पूरे पूरे ढंग से शुद्ध रूप से अभिन्न है, अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त भिन्नत्वाम नाम नामी। ये पद्म पुराण में कहा गया कृष्णस्य नाम चिंतामणि, भगवान श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि। चिंतामणि क्या चीज होती है? सोचते ही प्राप्त होता है, उसे चिंतामणि कहते हैं। सिर्फ सोचो, सोचो यानी स्मरण करो, स्मरण करते ही भगवान की प्राप्ति कराने वाली ताकत भगवान के नाम में। कलयुग में पवित्रता नष्ट हो चुकी है, तपश्चर्या नष्ट हो चुकी है, दया थोड़ी बाकी है क्या? नहीं, वो भी नष्ट हो चुकी है। सत्य का थोड़ा परिचय हो सकता है, यदि सत्य नष्ट होता तो हमें ये उपाय क्यों मिलता? भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान जो परम सत्य है वही उसकी ही प्राप्ति कराते हैं। तो शास्त्र का जो निचोड़ है तो हमें यहां इतनी सुलभता से प्राप्त होता है, तो हमें उसे बिना रोक टोक स्वीकार लेना चाहिए। हमारी मान्यता जो निराधार बनी रही है उसका आधार सिर्फ कृष्ण भगवान स्वयं यहां ले लेते हैं। अपनी जो पहले जो मान्यता थी वो मान्यता को छोड़ना ही पड़ेगा, यदि हमें थोड़ी बुद्धि बाकी रही है, बची रही है, ये बुद्धि को सदुपयोग करके भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वीकार लेना चाहिए। हमें बहुत सारी आदतें होती हैं कि हम इनके नाम लेते हैं, उनके नाम लेते हैं, देवताओं के नाम लेते हैं, सब नाम में फर्क क्या है, सब नाम एक है करके भी यूं क्यों घूटते फिरते हैं। कोई कृष्ण भगवान के अन्य मंत्र करते हैं, लेकिन वास्तविक फायदा किसी में नहीं दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि जो भवरोग की ये सूचित दवा है तो वो तो एक ही बताई, उसमें अनेक का प्रवेश नहीं है। भगवान के नाम में तो सारी शक्ति है, लेकिन हमारे लायकात तो समझनी चाहिए। तो कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र करने वाले नाके तिलक लगता है, गले में माला भी लटकाते हैं, फिर भी कली के दोष का भोग बन जाते हैं। तो सिर्फ भक्त होने का गर्व, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कि ये गर्व पहले मिटा दो। माला कौन कर पाते हैं, पुत्रनाद पिशु नीचे न करो सहिष्णु ना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान श्री कृष्ण का ये जो कीर्तन है, जप है, ये हमेशा कर सकता है कौन, जो तृण से भी अधिक नीचा हो, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुता वाला, और खुद को मान की अपेक्षा न होकर सबको मान देने की जिसमें तैयारी हो, वो ही भगवान का नाम अविरत ले सकता है, तो अविरत स्मरण भी कर सकता है। तो भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं जिनका जिस दिशा में उपयोग करना चाहिए, कि सर्वप्रथम अपने चरित्र को इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बताया है ऐसे लाने में भगवान के नाम की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। कई भक्त लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जपते हैं, भगवान के हर एक नाम में भगवान की सारी शक्तियां, लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान के दो मुख्य दो नाम होते हैं, यानी एक मुख्य नाम होता है, दूसरा गौण नाम होता है। जो गौण नाम है भगवान का, तो ये भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति के अनुलक्ष में जो होते हैं ये सब गौण नाम के। भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति में ये गौण नाम कम से कम हमें भौतिक सृष्टि से बाहर निकाल सकता है, यानी कि मुक्ति दे सकता है, लेकिन भक्ति नहीं दे सकता, प्रेम नहीं दे सकता। तो इसीलिए जीव जहां से आया है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए भगवान के मुख्य नामों वो उद्देश्य लिए देते जाते हैं, कि मुक्ति तो बीच में आ ही जाएगी, लेकिन वहां से हटकर हमें अध्यात्म के जगत में भगवान की सेवा और प्रेममयी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मुख्य नाम तो वृंदावन के, जहां ये प्रेम की भूमि है, तो ये भौतिक अवस्था यहां नहीं होती, यहां आध्यात्मिक अवस्था में हरे जीव भगवान का जो प्रेम पूर्वक नाम है
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे,
वही नाम का उच्चारण करके भगवत धाम को भी जा सकता है, वहां भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना मूल स्वरूप प्रकटा कर भगवान की नित्य सेवा जो प्रेममयी सेवा है वो कर सकता है। तो मुक्ति की अपेक्षा भगवत प्रेम ज्यादा महत्व, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम में महान गुण ये सब महान गुण यदि कलयुग में हमें प्राप्त हैं तो हमें थोड़ी अकलमंदी तो रखनी चाहिए। हमारी जड़ मान्यताओं पर हमें सारा जीवन व्यतीत करने से हमें क्या फायदा होगा? जिनका अनुस्मरण करना है उनके लिए ही तो जीवन दिया है, जिनका अनुस्मरण नहीं करते तो वास्तविक फायदा का मौका हम गंवा देते हैं। जब विदुर जी ने देखा कि भगवान के मंदिर हैं सब जगह, सारे तीर्थों, तो वो भगवान से बिल्कुल बिछुड़े नहीं। जब भगवान का अनुस्मरण चालू रहता है तो भगवान से विलगता कैसे हो सकती है? स्मरण मात्र में भगवान की सापेक्षता, भौतिकता में हमें अपनी नजर भौतिक वस्तुओं पर सापेक्ष है और हम भगवान को निरपेक्ष मानते हैं, लेकिन भगवत धाम में भगवान सापेक्ष है और वहां भौतिक वस्तु सारी निरपेक्ष हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये दृष्टि पलटानी चाहिए, भौतिक दृष्टि को पलटाकर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। भगवत गीता में सब जगह भगवान ने इस ढंग से ही देखने को कहा है, इस ढंग से ही समझने को कहा है। दुनियादारी की दृष्टि से भगवान को नहीं समझा जा सकता, उनके लिए जो दृष्टि बनानी है, ये दुनिया तो उल्टी है तो उल्टे को उल्टा देखकर सुल्टा देख सकते हैं, तो हमें उल्टा बनने की आवश्यकता, दुनिया की रीति से चलने से कोई फायदा नहीं। वैसे पेट के पोषण के लिए दुनियादारी यदि करें तो पेट का पोषण जब भगवान का विस्मरण हुआ तब से चालू हुआ, इसलिए पेट को पापी पेट कहते हैं। पेट पवित्र होता ही नहीं, और जब ये मनुष्य का पेट उल्टा हुआ है तब से ये पापी हुआ है। तो पशुओं को पापी या पुण्यशाली ऐसे उपनाम से तो दिया ही नहीं जाता, इन लोगों के लिए ये पाप पुण्य का प्रश्न नहीं, पाप पुण्य का तो प्रश्न मनुष्यों के लिए। विदुर जी जब हरिद्वार में आते हैं तो मैत्रेय मुनि से इनकी भेंट होती है और मैत्रेय मुनि से ये सब पूछते हैं, ये सृष्टि उत्पत्ति, भगवान ने ये सृष्टि उत्पत्ति के लिए पीछे क्या रहस्य है, क्यों किया, ये किया। तो वहां जब सृष्टि में 84 लाख योनियां उत्पन्न करने के पीछे भगवान का क्या इरादा था, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कार्य क्यों किया जब, तो वहां बताते हैं कि विदुर सुन, पहले 8 कुल मिलाकर 10 प्रकार की सृष्टि हुई, पहली 8 प्रकार की सामान्य जीव से लेकर चौबगा पशु तक है, चौबगा पशु के सारे पेट धरती के समांतर होते हैं, वो कभी कुदरत ये प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन करते नहीं, लेकिन ये नवमी प्रकृति की जो विचित्र प्रकृति है उसके बारे में सुन, क्षत्र, क्षत्र यानी विदुर क्षत्रिय, तो उन्हें पूछा कि सुन, तो विदुर जी तैयार थे ऐसे सुनने, वो कहते हैं कि अर्वाक्षत्र तो नवमं क्षत्रम एको विदो नृणाम, नृणाम यानी कि नर जो नवमी प्रकृति, तो अर्वाक्षत्र उसका प्रथम लक्षण ये है कि उसका पेट उल्टा है, लटकता है पेट, ये दो टांग से खड़ा हुआ ऐसे लटका है ना, तो अर्वाक स्त्रोत तो नवमं शतम एको विदो नृणाम, रजो अधिक कर्म परा दुखे च सुखमान, जिसमें ज्यादा रजोगुण होने के बजाय कर्म पराय है, कुछ न कुछ करता रहता है। कहां करेगा तो प्रकृति में ही करेगा, यानी कि प्रकृति के नियमों में कुछ अपना करना चाहता है, यानी कि उल्लंघन करता है। प्रकृति के हिसाब से नहीं चलना चाहता, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना चाहता। उल्लंघन करते क्या प्राप्त होता है उसमें? दुख। फिर भी अपने आप को सुखी मानने की कोशिश करता है, दुखों की गिनती पर। ऐसा विचित्र मनुष्य। तो कलयुग में हम कहां तक पापी पेट के लिए कितना व्यवहार कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? गुजराती में कहावत है कि पेट करावे लेट। जिनकी जिंदगी सिर्फ बोझा बन जाती है वो वेट कहलाती है, बोझे को उठाकर कहां कहां जाएंगे। तो प्रभुपाद जी वो कहानी भी कहते हैं, सभी यात्रा पे जा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत भी अपना सारा सामान मत्थे पर उठाकर जा रही है। भगवान ने दयाई वो आकर लड़के के रूप में कहा, भैया क्या मदद करो? कि बेटा ये जरा बोझा उतार, थोड़ी देर विश्राम करना, यात्रा जा रही है। तो भगवान तो बोझा उतारने आए। थोड़ी देर बाद वो बोली, बेटा चढ़ा दे फिर से आगे बढ़ना। अरे ऐसे तो कोई यात्रा बोझे के साथ हो सकती है? बोझा हल्का करना होता है। जब तक बोझा है तो भगवान का अनुस्मरण भी नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य विचित्र स्वभाव वाला है, इसकी विचित्रता उसने खुद ने पैदा की है, इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं, इसकी इच्छाओं का ही दोष है। इसीलिए इस कलयुग में एकमात्र ही महागुण काफी, एकमात्र महान गुण भी काफी है। जब भगवान का नाम नियमित रूप से नहीं लेता है तो उसकी दुर्दशा खड़ी, उसका मनुष्य जीवन भी शुरू नहीं होता। लेकिन भगवान के नाम द्वारा ही हम आकर्षित होते हैं। लेकिन जो आकर्षण नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु से दुर्दशा के अलावा कुछ नहीं बताते। दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिना अनुराग। जिसको भगवान के नाम प्रति नियमित रूप लेने में अनुराग नहीं है वो उनकी दुर्दशा। तो एकमात्र महत्गुण होने के कारण यदि हमारा जीवन संवर जाता है तो इतनी पर्याप्त बुद्धि भगवान ने दी है कि नहीं? नहीं दी तो भगवान के वो मुझसे प्रार्थना कर सकता है, मैं दे सकता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामो पयान दीते, मैं दे सकता। तो इस ढंग से हम यदि देखें तो मंदिरों की आवश्यकता भगवान के नाम के प्रचार के अलावा सिर्फ घंटी बजाने के लिए नहीं। और मंदिर में जो घंटी बजाता है तो उसके लिए बहुत कड़े नियम, ऐसे नहीं कि भगवान के साथ वो एक खिलौने की तरह चेष्टा करे। जैसे यहां दो तीन साल पहले किसी ने उसे भगवान श्री कृष्ण को हाथ में मुरली के बजाय ये सेल फोन दे दिया था और जीन्स पहनाई और काले चश्मे पहनाए। नहीं, मूल तत्व भगवान के श्री विग्रह की सेवा करने का फायदा कपिल देव परमात्मा का दर्शन कराने का बताते हैं। जब भगवान की मूर्ति को पत्थर मानता है, उसका दिल अभी तक पिघला नहीं है, तो उसका जीवन नरकगामी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो बहुत ऊंची कक्षा की होती है, ये तो मूल विग्रह, मूल विग्रह पर, लेकिन उसकी पूरी पूरी समझ नहीं है। तो सर्वप्रथम पूजा की विधियों प्रामाणिकता से सीखनी चाहिए और उसके अनुसार करने के लिए व्यक्ति को अपना जीवन भी उसी तरह बनाना चाहिए। कम से कम ब्राह्मण वर्ग के लोग पूजा के अधिकारी क्यों होते थे? क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्म जानता होना चाहिए। जो ब्रह्म जानता है उसे ब्राह्मण के, लेकिन उसे आगे का परिचय भगवान की श्री विग्रह की सेवा करके परमात्मा का होता है। ये परम सत्य का दूसरा अनुभव है। सर्वप्रथम ब्रह्म जाना तो वो प्राथमिक आंशिक परिचय कराता है परम सत्य का, लेकिन भगवान के श्री विग्रह की सेवा के दरमियान उसे परमात्मा का परिचय होना चाहिए। यानी कि उसने अपने जीवन का परिवर्तन पंडिता समदर्शी की तरह नहीं किया, जहां परमात्मा सर्वत्र विराजमान है ऐसा नहीं किया है, तो उसकी घंटी बजाना भी बेकार। वो पहुंचती नहीं, उनकी सेवा भगवान तरफ पहुंचती नहीं। तो कपिल देव कहते हैं इसे हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कड़े नियमों का पालन करके यदि भगवान की ऐसी प्रेम भक्त प्रेममयी सेवा, विग्रह सेवा, अंग सेवा इत्यादि करते रहते हैं, तब अवश्य परमात्मा का परिचय होगा। तो वो अपेक्षा से भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की जाती है। पर फिर भी भगवान श्री राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा के लिए जो मंदिर बनाते हैं, इन लोगों को कितना सावध रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां जहां भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा है, इस कलयुग में राधा कृष्ण का भाव समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए राधा कृष्ण का विग्रह होते हुए उसकी लक्ष्मी नारायण जैसी ही सेवा करते। जो द्वापर युग का नियम, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा, यहां भगवान के प्रभुपाद जी नाम उल्लेख करते हैं, जो वैकुंठ को निर्देश कराने वाले नाम है, वो सभी लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, लेकिन इनका नामांकरण भी ऐसा होता है, माधव लक्ष्मी के पति को माधव कहते हैं। तो ये सब नाम भगवान के कम से कम वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाले, यानी कि जहां भक्त अपनी इच्छा के अनुसार चार प्रकार की मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है वैकुंठ में। लेकिन गोलोक वृंदावन जहां राधा कृष्ण के प्रणय प्रकृति जहां है, वो प्रेम की भूमि के लिए सीधी राधा कृष्ण की सेवा कौन कर सकता है? आप बड़े बड़े साधु चरित्र, छे गोस्वामी, उनके पूर्ववर्ती माधवेंद्रपुरी इत्यादि भगवान के श्री विग्रह की कैसे सेवा करते, विरह भाव, कोई ने दावादारी नहीं की है कि हमने कृष्ण भगवान को देखा। तुम इनके साथ ऐसे कार्यकलाप में अंतरंग कैसे हो सकते? कभी उन्होंने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, न तो कोई शास्त्र में हमें मिलता है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कोई ऐसा दावादारी किया। कलयुग में राधा कृष्ण की सेवा बाहर असामान्य सामान्य जनों के लिए नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं अपने भावों को तरंगों को बहकाने के लिए मीराबाई की भी चर्चा करते हैं कि देखो वो तो भाव में कहती कितनी आगे पहुंच गई, अरे क्या क्या नहीं कहती थी, कितने पद लिखे हैं इन्होंने, और वृंदावन का प्रसंग बताते हैं कि उसका भगवान का अनुस्मरण तो कितना था कि वृंदावन में आई तो जीव गोस्वामी उस तत्कालीन महान आचार्य थे उनसे मिलने के लिए मीराबाई ने कहलवाया, तो लोग ऐसा उसका भाव ऊंचा बताने के लिए कहते हैं और वो स्वामी जी ने मना कर दिया, वो कह रहे हैं कि मैं कोई स्त्री का मुंह देखता नहीं, इसलिए मीराबाई ने टोना मारा कि अरे मैं तो वृंदावन में तो एक ही पुरुष को जानती हूँ, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आया। तो लोग कहते हैं लोक वायका के अनुसार ओहो स्वामी जी ने अपना अपनी गलती समझी और माफी मांगी और बाद में उनको मिले, इसमें कोई तथ्य नहीं है। सुनने में तो बहुत आएगा लेकिन न तो मीराबाई का व्यवस्थित इतिहास है किसी के पास न कुछ नहीं, लेकिन अपने कपोल कल्पित चरित्र बनाने का लोगों को, अपने मनगढ़ंत चरित्र बनाने का लोगों को काफी मुहावरा है। वास्तव में वैष्णव चरित्र द्वारा हमें पता चलता है कि यदि मीराबाई से जीव गोस्वामी की मुलाकात हुई तब उसे क्या शिक्षा मिली। कोई साधु संन्यासी के पास सत्संग करने के लिए जाता है तो उसको शिक्षा क्या मिलती, क्या स्वीकार की। तो मीराबाई ने जो स्वीकार किया उसकी चर्चा क्यों नहीं करते लोग, उनको गुरु के रूप में मानने लगे। पहले लोग तो जानते नहीं थे कि उसके गुरु कौन है, जो घर की बाहर नहीं निकल सकती है और सिर्फ घर में ही सारा प्रयोजन भक्ति का बनाती रहती है, उनको लोक परवाह न होते बाद में ऐसे गुरु कहाँ किए कब किए उसका उसकी कोई माहिती तो है ही नहीं। बल्कि हम ये देखें तो ये ऐसी गुरु शिष्य परंपरा से उसको भाव का ही बहकावा हुआ, तब यहां वृंदावन में आके क्या शिक्षा प्राप्त कर दी। तो मीराबाई ने कोई ऐसा पद लिखा है, वो मिलता कि जीव गोस्वामी की मुलाकात के बाद चैतन्य महाप्रभु को वो भगवान मानने लगी और सारी उसकी दृष्टि विरह से हटकर भगवान के नाम में जुड़ गई। वो पद तो आपको काफी परिचित है, अब तो हरि नाम लो लागी मात जशोमती माखन काज जाके बांधे पांव, श्याम किशोर भयो न वो गौरा चैतन्य जाको ना, कित छोड़ी वह मोहन मुरली कित छोड़ी वह गोपी, मुंड मुंडाई दोरी कटी बांधी माथे मोहन टोपी, अब तो हरि नाम लो लागी। पीताम्बर को भाव दिखाए कटी कोपी न कैसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण दस,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान श्री कृष्ण का अनुस्मरण करने के लिए भगवान का नाम ही पर्याप्त है, लेकिन उसे हमें प्रामाणिक रूप से ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो लोग बहानेबाजी करते हैं वो प्रामाणिक है ही नहीं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं। भगवान ये हरे कृष्णा महामंत्र लेने में जो झिझकते हैं वो काफी बहानेबाजी, सब बहाना मिलता है। तो अधिकृतता से यदि भगवान का नाम प्राप्त करने से जो फायदा है वो पूरी पूरी समझ के साथ आता है और हमें वो स्वीकारना चाहिए। विदुर जैसे महात्मा का ये सीधा साधा प्रसंग भी हमें काफी समझा जाता है कि भगवान का अनुस्मरण करने में मंदिर कितने सहायक है। तुम मंदिर के बाहर जाते हैं भगवान का नाम तो जाना ही चाहिए, साथ में चले जाता है तो तुम भगवान का वही भगवान का अनुस्मरण बना रहता है। श्री प्रभुपाद यहाँ मंदिरों में जो व्यवस्थाएं हैं, मंदिरों में अंग इत्यादि, मंदिर भी भगवान का देह के रूप में ही बनाया जाता है। और शिखर पर जो चक्र की बात कर रहे हैं, चक्र सब दूर से देख सकते हैं। हरिदास ठाकुर भी मुसलमान होते हैं वो मंदिर में प्रवेश कर नहीं पाते थे, आज 520 साल पहले की बात। जगन्नाथपुरी के मंदिर वाले इनको भी नहीं जानते थे, इतने नामाचार्य होने के बावजूद तो सिद्ध बकुल उनकी जगह है तो वहां से वो चक्र देखकर ही भगवान की सेवा करते हैं। मनोमन जब चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि नाम की महत्ता क्या है, तो हरि नाम चिंतामणि नाम की महत्ता पूर्ण रूप से बताते। बाद में चैतन्य महाप्रभु नाम अपराध सुनना चाहते, उसके बाद में सेवा अपराध सुनना चाहते, तो हरिदास ठाकुर कितने भी विनम्रता रखकर कहते हैं भगवान मैंने तो कभी भगवान के विग्रह की सेवा तो की ही नहीं, तो आप मुझे क्यों पूछते हो। तो चेतन माप तूने तो अभी तो कहा कि भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं, चल बोल। तो तब उन्होंने विस्तार पूर्वक भगवान की सेवा में अपराध जो आते हैं वो बताए, चार प्रकार के अपराध की बात करते हैं। मंदिर में भक्तों द्वारा यानी कि जो पूजा करता है उनके द्वारा जो अपराध होता है, जो दर्शनार्थी आते हैं उनके द्वारा जो अपराध होता है, भगवान की स्थापना के समय में जो अपराध होता है वो, ये सारे अपराधों की चर्चा है। और वैष्णव अपराध, धाम अपराध, क्या क्या नहीं कहा। भगवान का नाम जानते हुए सब प्रकार की माहिती जिनको प्राप्त है वो अनुभूति हरिदास को थी। तो यहां हमें भगवान के अनुस्मरण की बातें सीखनी मिलती है। तो मंदिर की उपस्थिति भगवान का हमेशा स्मरण बना रहे, हमारी जिंदगी ऐसी तरह ढलनी चाहिए कि जिसके द्वारा हम कहीं भी जाएं अपने इष्ट देव को साथ में हृदय में ही लेकर जाएं। ये भक्त की अमूल्य अमानत, चार चीजें उसे छुपाने को कहा, जो मंत्र उसको छुपा के चलता है, माला जप माला भी छुपाते चलता है, कहीं कहीं भक्ति में रखने नहीं देता, भूल नहीं जाता। तीसरा अपने गुरु को छुपाता है, अपने हृदय नहीं रखता। और चौथा अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जिनकी वो सेवा कर रहा है। तो इस तरह भक्त की जो मिलकत है वो भगवान बन जाते हैं। दूसरी मिलकत हृदय में छुपाने से कोई फायदा ही नहीं। हृदय की तिजोरी में हमें अपने इष्ट देव को यानी कि भगवान को, कोई देवता इष्ट देव नहीं बन सकते। गोकाल के क्रम में हमें कितना इष्ट दे सकते हैं, हमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो मनुष्य जीवन में देवताओं की सराहना करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का तो प्रयत्न करना ही चाहिए। जिंदगी भर इनकी ही मान्यता रखने से क्या फायदा, अथवा चलो समझो कि दूसरे जन्म में भी देवता कुल में या देवता के धाम में हमें जन्म मिलता है, क्या देव प्रता देवा तो वहां भी दूसरा जन्म में रगड़ होगी, लेकिन प्रगति कौन कर रहा है? भगवान के लिए अलग चीज है। भक्ति की प्रगति के लिए मनुष्य जन्म ज्यादा अनुकूल है, देवता का जन्म नहीं है। देवताओं के कुल में जन्म लेते हम शायद देवताओं की कार्यवाही जो है मैनेजमेंट की उसमें फंस जाएंगे। भौतिक सृष्टि का संचालन देवताओं के सर पर है, यानी कि वो यदि हमें प्रक्रिया में फंस गए तो भगवान के लिए क्या बाकी? तो बेहतर है मनुष्य जन्म भी अनुकूल है, देवताओं का जन्म भी अनुकूल नहीं बताया। जहां तक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना है तो यही जन्म हम जितनी तीव्रता से कोशिश करते हैं वो सारी भक्ति है, उसमें बिल्कुल कोई नासिपास होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ जितना ही वो तो नारद मुनि हमें काफी सराहना करते हैं कि त्यक्त्वा सुधर्मं चरणानुजं हरेर। हरे भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल जिसने ग्रहण किया है तो भजन अपक्वो पतित तभी, भजन की अपरिपक्व दशा में यदि वो गिरता है तो वह अभद्र अभूत मनुष्य की उसका क्या अहित होने वाला। भगवान तो कारण भी देते हैं, अथवा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट भी चाहते हैं। तो शुचिनाम और श्रीमताम ये दोनों तो मनुष्य जन्म में होते हैं, देवता को में थोड़ा होता है। तो अवश्य दूसरा है मनुष्य जन्म जहां हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं वो अवश्य प्राप्त होगा। तो इस ढंग से हमें ये मनुष्य जन्म में अपनी सारी सिद्धि भगवान के नाम से हो सकती है। तो बिना जिज्ञे हरे कृष्णा महामंत्र अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी को कोई प्रश्न है?
स्मरण और अनुस्मरण के अर्थ में क्या अंतर है?
स्मरण और अनुस्मरण, स्मरण तो थोड़ी देर भी आता है चला जाता है, अनुस्मरण स्मरण के पीछे स्मरण के पीछे
अनुस्मरण का अर्थ ये नहीं है प्रभु,
अविरत स्मरण होना,
यानी जो भी चीज हम देखें उससे हमें भगवान कृष्ण का स्मरण हो, यानी किसी चीज को देखने से जब स्मरण होता है उसको अनुस्मरण के रूप में
नहीं, देखने से ही नहीं, पांच पांच इंद्रियों से भगवान की प्रतीति कर सकते हो। एक इंद्रिया थोड़ी थी है, पांच पांच साथ ही लगाओ।
अनु माने स्मरण जो पीछे हो, किसी चीज से जो रिमाइंड हो उसको अनुस्मरण।
ये मायावादी तर्क है, अनुस्मरण यानी अविरत स्मरण। चलो प्रभुपाद की जय।